तत्वार्थ सूत्र लेक्चर नंबर 10। ओम सिद्धे आचार्य उमा स्वामी द्वारा लिखा गया जो तत्वार्थ सूत्र है उसके ऊपर राम जी भाई ने जो टीका रची है वो मोक्ष शास्त्र नामक जो शास्त्र है उसके हम पेज नंबर 30 हिंदी यानी हम ये 14वां पॉइंट देखने जा रहे हैं जहां प्रमाण और नय की बात चल रही थी। गुजराती में कितना पेज है? 24। अभी यहाँ 14वां नंबर का जो पॉइंट है, मिली भाई कल आपका जो प्रश्न था ना उसका उत्तर इसमें है। ज्ञान दोनों नयों का करना चाहिए किंतु उसमें परमार्थतः आदरणीय निश्चय नये है ऐसी श्रद्धा करना चाहिए। यानी परमार्थता यानी परमार्थ की सिद्धि के लिए प्राप्ति के लिए आदरणीय यानी आश्रय करने योग्य, आदरणीय यानी उसकी पूजा करना ये वगैरह वो बात नहीं। जानने के लिए तो दोनों नयों का ज्ञान करना चाहिए लेकिन आश्रय करना है तो जो निश्चय नय है ऐसे पहले श्रद्धा करनी चाहिए, इसलिए निश्चय नय को आदरणीय कहा। लेकिन वास्तव में ऐसा है कि जो निश्चय नय का विषयभूत ऐसा जो आत्मा है वह आदरणीय है। तो शॉर्ट में कह देते हैं निश्चय नय आदरणीय है। मान लो आपकी गाड़ी कुछ कारण से बंद हो गई और आपको जल्दी से जाना है तो आप रास्ते में खड़े हो और क्या करते हो, टैक्सी, तो क्या कहते टैक्सी वाले रुक जा ऐसा बोलते कि टैक्सी खाली करते हैं। वैसा यहां आदरणीय निश्चय नहीं है, ये शॉर्ट में टुक में बताया। यहां तो नहीं की बात चल रही लेकिन हमें तो ये समझना चाहिए कि निश्चय नहीं तो एक अंश का भाग है भाई, अंश को बताने वाला है। तो उसका हम अगर आसरा लेते हैं आश्रय लेते हैं तो हमें पार्ट ऑफ द आत्मा ध्यान में आएगा। देखो बात ऐसी थी, ये बहुत कड़वी बात है, पर हम एक दफे किसी व्यक्ति के पास गए थे तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव बार बार ने स्वामी जी निश्चय ने का आश्रय करना चाहिए, निश्चय ने का आश्रय करना चाहिए, और वे कहते हैं कि मैं स्वयं आत्मा यानी सम्यक दृष्टि हूं, लोग भी कहते हैं, तो उनके तो एक केवल आत्मा का अंश का ज्ञान हुआ है। निश्चय नय, नय इटसेल्फ इज अंश ऑफ पूरी वस्तु जो है पदार्थ है। तो वास्तव में देखा जाए तो उनको आत्मा का अनुभव नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कंक्लूड किया। लेकिन यहां क्या बता रहे हैं, निश्चय नय आदरणीय है का मतलब ही यह है के निश्चय नय का विषयभूत ऐसा जो त्रिकाली ध्रुव स्वभाव है वह आदरणीय, नय को आदरणीय कहेंगे नहीं वो। अब क्या करें, बोलने में ऐसी बात आती है, समझने वाले ने केवल शाब्दिक अर्थ को पकड़ के रखा है, उसका अंदर का भाव भाषण नहीं हुआ है, तो ऐसी कल्पनाएं हो जाती है। इसलिए इस बात को मैं विशेष रूप से आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। अब क्या कह रहे हैं देखो, व्यवहार नए है। ये पूरी बात मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से उन्होंने उठाई है, और हमारा मोक्ष मार्ग प्रकाशक का डॉक्टर अद्योपंत हुआ है यहां पर। व्यवहार नए स्वद्रव्य परद्रव्य अथवा उनके भावों को या कारण कार्यादि को किसी का किसी में मिलाकर निरूपण करता है। ये व्यवहार ने क्या क्या करता है, एक द्रव्य और दो दूसरा द्रव्य इनको मिला के कथन करता है। यानी ये किसी राजा का बेटा पैदा हो गया तो उस राजा के बेटे को कहेंगे कि ये सूर्य बिंब जैसा बेटा है। यानी सूर्य बिंब तो प्रकाश है, सूर्य बिंब तो पुद्गल है, और बेटे को उस रूप कहना, ये किसी को किसी में मिलाकर यानी स्वद्रव्य परद्रव्य को मिलाकर अथवा उसके भावों को, यानी भाव यानी गुण, यानी हमारा बेटा बहुत गोरा है ऐसा कुछ बोलना, वो क्या है कि भाव दो द्रव्यों के भाव एक दूसरे को मिलाकर बोलना, या कार्यन कार्यादि को, यानी कार्य तो होता है स्वद्रव्य में लेकिन कारण किसी और को कहना, यानी गुरु से ज्ञान होता है, होता ज्ञान तो स्व से, शास्त्र से ज्ञान होता है, होता ज्ञान तो स्व से, लेकिन कारण और कार्यादिक को किसी में मिलाकर निरूपण करना, ये किसका विषय है, तो कहते व्यवहार ने कहा। यानी ऐसी कोई कथन शास्त्र में आते हैं तो समझना के सत्यार्थ ऐसा नहीं है, यह तो समझने और समझाने के लिए ये बात बताई गई है। क्या कहते हैं, किसी में किसी का यानी कारण का कार्यादि का जो कुछ होगा किसी में मिलाकर निरूपण करता है कौन, तो कहते व्यवहार ने। यह तीन पॉइंट बताए ना, व्यवहार ने स्वद्रव्य और परद्रव्य का एक पॉइंट, उसके भावों का दूसरा पॉइंट, कारण कार्यादिक का उनको किसी का किसी में मिलाकर निरूपण करता है। जैसा हम बहुत बार कहते हैं ये हमारे मुनीम हैं, ये हमारा सारा कारोबार देखते हैं, वो आपके इधर कौन है भाई साहब? हाँ नहीं नहीं नहीं, आप क्या वो हमेशा काम करने वाले कौन है? दवे दवे दवे, ये दवे नहीं, हमारे सब काम करते हैं, चिंता मत करो वो बराबर कर देंगे, ऐसा यहाँ ऑथेंटिकली बोलते हैं। तो क्या है व्यवहार ने कथन है, ख्याल में ना, मैं अपना पॉइंट नहीं छूटना चाहिए। ये क्या है, रोज हम बोलते हैं ना ये हमारे क्या रसोई वाली है, ये सारा अनाज मतलब रसोई बनाते हैं, ना मैं स्वयं बना सकता हूँ ना अन्य कोई बना सकता है, लेकिन वो खाना बनाती है, ये कहना कैसा है व्यवहार नहीं कर सकते। तो यहाँ कहते कारण कार्यादि को किसी का किसी में मिलाकर निरूपण करता है कौन, व्यवहार नहीं। इसलिए ऐसे ही श्रद्धान से यानी जैसा कहा है ऐसा ही हमने मान लिया, श्रद्धान किया, तो कहते मिथ्यात्व होता है, अतः उसका त्याग करना चाहिए। ये उसका त्याग करना चाहिए यानी किसका मिली भाई? अच्छा हाँ, यानी ये जो श्रद्धान खोटा कर रहे हैं ना उसका हमें त्याग करना है, मिथ्यात्व का त्याग करना है। लेकिन आपने सही बताया कि हमने जो गलत मान्यता रखी है, क्या गलत मान्यता रखी है, जैसा व्यवहार नहीं कहता है वैसा ही हमने माना है, उसका त्याग करना। निश्चय ने स्वद्रव्य परद्रव्य को अथवा उसके भावों को या कारण कार्यादिक को कार्यादि को चलो ठीक है ना, यथावत निरूपण करता है तथा किसी को किसी में नहीं मिलाता। ये किसी का है ना, वो किसी को चाहिए मेरे हिसाब से। ये ऊपर जो है ना व्यवहार ने में लास्ट वर्ड जो लिखा है गुजराती में अन्य कुछ होगा, तो किसी को किसी में नीचे लिखा है, देखो वही निश्चय नय तथा किसी को किसी में नहीं मिला था, इसलिए ऐसे ही श्रद्धान से सम्यक तो होता है, क्योंकि वो यथार्थ श्रद्धान है ना, इसलिए कहते हैं अतः उनका श्रद्धान करना चाहिए। इन दोनों नयों को समकक्षी यानी मिले हुए, ये गुजराती में क्या लिखा है मालूम नहीं, हिंदी में मैं बताऊंगा। इन दोनों को समकक्षी, समकक्षी यानी इक्वल, दोनों एक ही कक्षा में एक ही दर्जे के हैं, एक ही लेवल के हैं, एक ही हाईएस्ट क्वालिटी के हैं, जो भी है, इन दोनों नयों को समकक्षी यानी समान कोटि का यानी इक्वल कैटेगरी का मानना सो मिथ्यात्व है। अपने कल इसमें थोड़ी सी बात हुई ना, 15 नंबर व्यवहार और निश्चय का फल। ये व्यवहार कहते हैं तो समझना कि व्यवहार नए और निश्चय नए, ये उसको काट के गुजराती में क्या लिखा है,
व्यवहार
वीतराग कथित व्यवहार अशुभ से बचाकर जीव को शुभ भाव में ले जाता है। उसका दृष्टांत मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि है। द्रव्यलिंगी मुनि क्या हो रहे हैं कि वे अशुभ से बचने के लिए महाव्रतों को धारण करते हैं, तो उन्होंने क्या बताया कि अशुभ से बचकर जीव को शुभ भाव में लाते हैं। ये क्या है, वीतराग कथित व्यवहार, वे भगवान के द्वारा कथित व्रतादि का निरतिचार पालन करते हैं। कौन, वो मुनिराज, इसलिए शुभ भाव के कारण नौवे ग्रेवे तक जाते हैं, किंतु उनका संसार बना रहता है और भगवान के द्वारा कथित निश्चय शुभ और अशुभ दोनों से बचाकर जीव को शुद्ध भाव में यानी मोक्ष में ले जाता है। उसका दृष्टांत सम्यक दृष्टि है जो कि नियमतः मोक्ष प्राप्त करता है। नियमतः यानी निश्चय से डेफिनेटली मोक्ष की प्राप्ति सम्यक दृष्टि को होती है। अभी अगला 16 नंबर का पॉइंट, शास्त्रों में दोनों ने उनको ग्रहण करना कहा है, सो कैसे, जैन शास्त्रों का अर्थ करने की पद्धति, जैन शास्त्रों में वस्तु का स्वरूप समझाने के दो प्रकार है, निश्चय ने और व्यवहार ने। निश्चय ने अर्थात वस्तु सत्यार्थ रूप में, सत्यार्थ रूप यानी इन रियलिटी, जैसी है वैसी, जैसी हो उसी प्रकार कहना, इसलिए निश्चय ने की मुख्यता से जहां कथन हो वहां उसे तो सत्यार्थ ऐसा ही है यानी वस्तु स्थिति ऐसी ही है यों जानना चाहिए। यानी जहां जहां निश्चय ने से कथन किया है वहां वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। दूसरा पॉइंट, व्यवहार नय अर्थात वस्तु सत्यार्थ रूप से वैसी न हो किंतु पर वस्तु के साथ का संबंध बतलाने के लिए कथन हो। यहां तो उन्होंने उदाहरण दिया है, अभी देखो आपके घर में चांदी के बर्तन है, काहे के बर्तन, उसके ऊपर नाम किसका लिखा है, प्रेरणा बेन का लिखा है कि अश्विन बेन का, पढ़ के आना कल मुझे बताना, अमोल का लिखा, अच्छा चलो अमोल का लिखा, अपना क्या। वास्तव में वो जो थाली है, लोटा है, ग्लास है, जो कुछ है, वाटी है, ये काहे की है, अमोल की है, अमोल से बनी है, तो उसमें नाम किसका लिखा है, अमोल भगवान के लिए। आप एकदम निश्चय नहीं में मत जाना, तो वो है तो चांदी की, लेकिन उसको कोई लिखता है कि ये चांदी की थाली है, ये चांदी का बर्तन है, ये चांदी का, तो यहां क्या कह रहे हैं, संयोग। देखो देखो, व्यवहार में वस्तु सत्यार्थ रूप से वैसी न हो किंतु पर वस्तु के साथ का संबंध बतलाने के लिए, यानी अन्य कोई उसके ऊपर क्लेम न करे, इसके लिए यह कथन हो। जैसे घी का घड़ा, क्या लिखा, घड़ा जो होता है वो तो मिट्टी का होता है, लेकिन हम बताते हैं क्योंकि उसके अंदर घी रखा रहता है पहले के जमाने में। आजकल तो कोई घी भी नहीं खाता है ना, क्योंकि वो क्या डाइटिंग फाइटिंग कुछ करते हैं ना, फाइटिंग नहीं डाइटिंग, घी खाएगा वो फाइटिंग करेगा क्यों। लेकिन उस जमाने में घी घड़े में रखने का प्रघात था, इसलिए ऐसी बात आचार्य देखते थे ना घी का घड़ा, तो उन्होंने सबको मालूम भी था इसलिए उसका उदाहरण दिया। यद्यपि घड़ा घी का नहीं किंतु मिट्टी का है, तथापि घी और घड़ा दोनों एक साथ है, यह बताने के लिए उसे घी का घड़ा कहा। क्योंकि अपने घर में बहुत घड़े होते हैं, पहले के जमाने में घड़े में क्या क्या नहीं रखते थे, अनाज रखते थे, पानी रखते थे और घी रखते थे और कुछ कुछ जो भी चीज अंदर अनाज के अंदर पैसा छुपा के रखते थे, पहले के जमाने की बात है। लेकिन तो यहां उसका संबंध साथ में कौन है ये बताने के लिए। अब यहां अपन भी अपने घर में भी ऐसे ही होते हैं ना, हम बर्निया लाते हैं एक डजन दो डजन जिसकी जितनी है, तो कि ये नमक की बर्नी, ये चाय की बर्नी, ये शक्कर की बर्नी, ऐसा हम ही नाम देते हैं। है तो संयोग की अपेक्षा से ये फला फला है तो बता रहे हैं। यद्यपि घड़ा घी का नहीं किंतु मिट्टी का है, तथा भी घी और घड़ा दोनों एक साथ है, यह बताने के लिए उसे घी का घड़ा कहा जाता है। इस प्रकार जहां व्यवहार से कथन हो वहां यह समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए व्यवहार कथन को, कि वास्तव में तो ऐसा नहीं है किंतु निमित्त आदि बतलाने के लिए उपचार से वैसा कथन है। दोनों नयों के कथन को सत्यार्थ जानना अर्थात इस प्रकार भी है और इस प्रकार भी है, यानी व्यवहार नयन ने जैसा कहा वैसा भी है, निश्चय नयन ने कहा है वैसा भी है, ऐसा मानना सो भ्रम है। इसलिए निश्चय कथन को सत्यार्थ जानना चाहिए। और व्यवहार कथन को नहीं प्रत्युत यह समझना चाहिए कि वह निमित्त आदि को बतलाने वाला उपचार कथन है। इस प्रकार दोनों नयों के कथन का अर्थ करना सो दोनों नयों का ग्रहण है, दोनों को समकक्ष अथवा आदरणीय मानना सो भ्रम है, सत्यार्थ को ही आदरणीय मानना चाहिए। संयोग, संयोग भी होता है। आपका पूछना था निमित्त आदि में किसको लेना है ना, संयोग भी हो सकते हैं।
जिनको एक इंद्रिय जीव कहा, क्यों जीव को कितनी इंद्रिय होती है, ऐसा
ब्रैकेट में लिखा है न इज इक्वल टू श्रुत ज्ञान का एक पहलू, यानी एक अंश, एक विशिष्ट बात। निमित्त इज इक्वल टू विद्यमान अनुकूल पर वस्तु, ये विद्यमान अनुकूल पर वस्तु, ये जब समझ में आएगा जब हमें निमित्त की परिभाषा याद रहेगी। किसको किसको याद है निमित्त? अरे अरे
याद है,
बहुत अच्छा, बोलना मत। निमित्त की परिभाषा किसको किसको याद है? हाँ अरे आप बताए, अच्छा चलेगा थोड़ी सुशीला भी एकदम बना, जितना बराबर है उतना बोलो।
कार्य मान रूप,
प्रेरणा बेन आपको मालूम याद है हिंदी में गुजराती में। हाँ बोल चल।
जो स्वयं तो काय रूप न परिणमे,
क्या कहा उसने, जो जो यानी कौन निमित्त, स्वयं तो कार्य रूप न परिणमे परंतु
कार्य की उत्पत्ति में अनुरूप होने का अनुकूल होने का आरोप जिस पे आवे उसे निमित्त।
बहुत अच्छा बहुत अच्छा। यानी क्या कह रहे हैं, स्वयं तो कार्य नहीं करता है, क्या कार्य करता है, स्वयं तो कार्य नहीं करता है लेकिन जो कार्य हो रहा है कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे निमित्त कहते हैं। ये बिल्कुल हमें याद होगा। तो ये क्या कहना चाहते हैं, निमित्त इज इक्वल टू विद्यमान, विद्यमान यानी है वह हाजिर, अनुकूल चीजें बहुत है लेकिन अनुकूल जो होगा उसी के ऊपर आरोप आएगा। अब आगे 17 नंबर, निश्चयाभासी का स्वरूप। निश्चयाभासी यानी क्या, देखो अब ये सब पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी उसकी रूपरेखा देखते हैं। निश्चयाभासी यानी क्या, देखो जीव को स्वभाव से देखना और जीव को पर्याय रूप से देखना, यानी हम और आप स्वभाव से तो केवली समान है, यानी हम भी स्वभाव से केवल ज्ञान स्वरूप है, वितराग स्वरूप है, अनंत ज्ञान के धारक है स्वभाव से। लेकिन पर्याय में वास्तविकता कैसी है कि हम छद्मस्थ हैं, कम ज्ञान वाले हैं, हम रागी द्वेषी हैं और हम दुखी हैं। तो अभी जो जीव जैन कुल में जन्मते हैं कहो या अन्य कहीं भी जन्मते हैं, लेकिन जब समझ पढ़ा कि मम स्वरूप है सिद्ध समान, तो मान लिया क्या ऐसा ही है, तो क्या होगा, जो स्वभाव से जैसा स्वरूप कहा गया है वैसा पर्याय में मान लेना। हम तो क्या, जैसा हमने देखा था ना कि जैनियों को तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान होता ही नहीं है, ऐसा मानना क्या हो गया। अब दूसरी बात की स्वयं को पर्याय में, अभी हमको क्या पढ़ाई बढ़ाई करने की क्या जरूरत है, जैसा लोग बोलते नहीं ये राग द्वेष तो पुतगल के है, मेरे थोड़ी है, वो तो पुतगल के है, एक समय सार पढ़ के ऐसा बोलते हैं तो उसको क्या हो गया, निश्चय जैसा है उसका आभास हुआ, यानी जैसा द्रव्य का स्वभाव है, मेरा द्रव्य मेरा स्वभाव है त्रिकाली स्वभाव, वैसा पर्याय में अभी उपलब्ध नहीं है, उत्पन्न हुआ नहीं है, फिर भी वैसा मानना, तो उसे निश्चयाभासी कहेंगे। देखो यहां क्या कह रहे हैं, जो जीव आत्मा के त्रैकालिक स्वरूप को स्वीकार करे किंतु यह स्वीकार न करे कि अपने भूल के कारण वर्तमान पर्याय में निज के विकार है, वह निश्चयाभासी है, उसे शुष्क ज्ञानी भी कहते हैं। शुष्क यानी अभी गुजराती शब्द क्या है, हाँ? नहीं गुजराती शब्द क्या है, मैं बताता हूँ, गीला कपड़ा कैसा है, गीला, और वही जो पानी नहीं होगा तो कैसा होगा, सूखा हुआ, शुष्क
ड्राई,
हाँ? यानी क्या है, केवल बात बात करता है वो शुष्क ज्ञानी, यानी बोलने में ऐसा है। देखो हमारे यहां तो ऐसा बोलते थे कि जो आप समझ जाएंगे, औरों को बताए ब्रह्म ज्ञान और स्वयं कोरड़ा, कोरड़ा यानी जो गीला नहीं है, सूखा, पाषाण, पाषाण यानी पत्थर, यानी दूसरों को बहुत ये देगा ब्रह्म ज्ञान, यानी बहुत बातें सिखाएगा बताएगा और अपन को उल्टा पुल्टा ही करेगा, वैसा यहां ये शुष्क ज्ञानी जो है यानी केवल बोलने बताने के लिए उसका ज्ञान आगे बढ़ता है लेकिन स्वयं उस रूप नहीं परिणमता है। ये श्रीमद जी ने भी शब्द वापरा हुआ है,
एक होता है रूखा, एक होता है चिकना,
शुष्क ज्ञानी ऐसा कुछ है ना,
कोई क्रिया जड़ नहीं रहा, कोई शुष्क ज्ञान, शुष्क ज्ञान ना कोई वाले मारे जो करुणा
हो, वो वही निश्चयवासी की बात है। ये हमने आत्मख्याति पढ़ा,
व्यवहारवासी दोनों की बात, क्रिया जड़ को व्यवहारवासी
व्यवहारवासी को भी लिया बरोबर। अभी क्या कहते हैं 18 नंबर, व्यवहारावासी का स्वरूप। प्रथम व्यवहार चाहिए, व्यवहार करते करते निश्चय धर्म होता है ऐसा मानकर शुभरा करता है, परंतु अपना त्रैकालिक ध्रुव ज्ञायक मात्र स्वभाव नहीं मानता और न अंतर्मुख होता है, ऐसे जीव को सच्चे देव शास्त्र गुरु तथा सप्त तत्वों की व्यवहार श्रद्धा है तो भी अनादि की निमित्त तथा व्यवहार यानी भेद और पराश्रय की रुचि नहीं छोड़ता और सप्त तत्वों की तत्व की निश्चय श्रद्धा नहीं करता, इसलिए वह व्यवहारावासी है, उसे क्रिया जड़ भी कहते हैं। अभी देखो अभी ये बहुत बड़ा हुआ है,
गुजराती में शॉर्ट में उन्होंने बहुत डिटेल,
गुजराती में पढ़ो
दो तीन ही लाइन है। जीव ने शुभ भाव की धर्मता एम स्वीकारे, पण जीवना त्रिकाळी ध्रुव स्वभाव ने न स्वीकारे अने तेथी ते तरफ पोतानु वलन न फेरवे ते व्यवहारवासी छे, तेने क्रियाजड़ पण कहेवामां आवे छे। शरीर ने क्रिया थी धर्म थाय एम माने ते तो व्यवहाराभास थी पण घणे दूर छे,
घणे दूर छे के घणो दूर छे,
ना घणे लिखा
बराबर घने दूर छे बराबर छे। अच्छा देखो इन शॉर्ट क्या है, हमने अभी देखा ना अपने स्व की तरफ देखने की दो नजरिया है, एक जैसा स्वभाव है वैसा और एक है पर्याय में जो कुछ चल रहा है उसको। तो अभी यहाँ कह रहे हैं कि वो पर्याय में तो बहुत प्रयत्नशील है, क्या कुछ शुभ भाव करने के पीछे लगा हुआ है, लेकिन इस शुभ भाव से भी कुछ जुदापन यानी अपना त्रिकाली शुद्ध स्वभाव है इसके उसे पहचान ही नहीं है, और जो अपने स्वरूप में एकाग्र होने से धर्म की उत्पत्ति होती है इस बात का उसे ज्ञान नहीं है, रुचि नहीं है, और वो ऐसा ही मानता है कि शुभ भाव करें या कोई पूजा करे विधान करे जो कुछ मतलब उपास करें व्रत करें जो कुछ है उससे हमें धर्म होगा। और आगे जाके ऐसा भी बताता है कि व्यवहार करते करते धर्म मतलब निश्चय पैदा होगा, ऐसा मानने वाले जो है उनको व्यवहाराभासी। ये बात तो हमने पहले देखी थी लेकिन यहां विषय चल रहा है इसलिए हम नक्की उसका दोबारा बात छेड़ेंगे
कि पूजा दान करने वाले ने उसमें शरीर की क्रिया अलग और वहाँ वो करने के भाव अलग, तो व्यवहारवासी तो उस भाव को मोक्ष मार्ग मान रहे और कहते जो शरीर की क्रिया को ही धर्म मान रहे वो तो बहुत दूर, अभी उसकी तो बात ही नहीं, वो तो बहुत तीव्र मिथ्या दृष्टि है, ये भी मिथ्या दृष्टि है परंतु वो तो और आगे वाला, क्योंकि वो जड़ जड़ से उसे मोक्ष मार्ग मान, शरीर जड़ है अचेतन है पर वस्तु है और उससे वो धर्म मान, वो तो और गैर,
जैसे हम कहते कोसो दूर है घने दूर छे। देखो मैं ये कह रहा था कि हम ये नक्की करें पहले कि पहले व्यवहार पैदा होता है क्या, पहला निश्चय पैदा होता है। नितिन भाई पूर्व ज्ञानी पहले निश्चय हो गया, ये बात पक्की हो गई ना। देखो जो प्रश्न पूछा है उसके अनुसार उत्तर देना, मैंने क्या बताया पूछा कि पहले निश्चय उत्पन्न होता है क्या, पहले व्यवहार उत्पन्न होता है ना? दोनों साथ में आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं, आप मिले हुए बताओ भैया, दोनों साथ में कॉन्फिडेंट नहीं ना। देखो देखो बात ऐसी होती है, ये निश्चय किसको कहना और व्यवहार किसे कहना, इस बात का हमें थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है तो इसमें जो दिमाग में कुछ खोटी बात चल रही तो उसको हम क्लियर कर सकेंगे। वास्तव में अपने आत्मा के अनुभव को, अभी हम सम्यक दर्शन की अपेक्षा से एक बात बोल रहे हैं, उसको निश्चय सम्यक दर्शन कहेंगे, जिसको हम सम्यक ज्ञान सम्यक क्या बोलते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कहते हैं। अब क्या है, उस समय जिस समय एक कषाय चौकड़ी का वहां अनुदय है, उस समय तीन चौकड़ियां के विद्यमानता वहां है, और जिस समय यहां शुद्धोपयोग चल रहा है, अब बहुत डिटेल में जाएंगे तो उसी समय तीन कषाय जो है उनका अबुद्धिपूर्वक राग जो है, वो अबुद्धिपूर्वक राग से देव गुरु शास्त्र के प्रति उनके अहोभाव होता है, भक्ति होती है, आदर होता है, उसको वो जो शुभ परिणाम है उसको यहां व्यवहार सम्यक दर्शन वो आदि कहेंगे। तो बात ऐसी है कि यहां एक भी कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं हुआ है, अभाव ने अनुदय नहीं हुआ है, और उसको हम व्यवहार सम्यक दर्शन कहेंगे तो वो बराबर नहीं। जिस समय निश्चय है उसी समय व्यवहार, दोनों की उत्पत्ति एक साथ होती है, आगे पीछे बिल्कुल नहीं होती। अब यहां पर ये जीव क्या मान रहा है कि मैं शुभ भाव करूं या शुभ क्रियाएं करूं तो मुझे आगे जाके कहीं ना कहीं निश्चय धर्म होगा, लेकिन जो वो भंवर में अटकता है पानी के, वमड़ वमड़ सुन के आगे गुजार, हाँ उसमें जो अटकता है उससे वो बाहर निकलेगा ही नहीं, जाएगा तो अंदर ही जाएगा। वैसे ये शुभ भाव में जो अटका हुआ है तो शुभ भाव से बाहर निकलकर मुझे शुद्ध स्वरूप का अनुभव करना है, ये बात उसके ज्ञान में ही नहीं आती, वो करने में ही वो अटका रहता है। जिस समय उससे बाहर निकलेगा आगे बढ़ सकता है, उसमें क्या बड़ी बात है। इसलिए यहां व्यवहारावासी की बात देख रहे हैं, प्रथम व्यवहार चाहिए यानी पहले व्यवहार करना चाहिए। व्यवहार करते करते निश्चय धर्म होता है ऐसा मानकर शुभ रंग करता है, परंतु अभी इसमें इसकी गलती क्या हो रही है, अपना त्रैकालिक ध्रुव स्वभाव कैसा ज्ञायक मात्र स्वभाव नहीं मानता है, यानी उसके बारे में कुछ सोचता ही नहीं है, और न अंतर्मुख होता है, अंतर्मुख होता है यानी अपना स्वरूप का अनुभव नहीं करता है, ऐसे जीव को सच। अभी ये एक तो बात क्या की, उसने स्वभाव को नहीं माना और अंतर्मुख नहीं हुआ, तब क्या कह रहे हैं, ऐसे जीव को सच्चे देव शास्त्र गुरु तथा सप्त तत्वों की यानी सात तत्वों की व्यवहार श्रद्धा है तो भी अनादि की निमित्त तथा व्यवहार यानी भेद और पराश्रय की रुचि नहीं छोड़ता और सप्त तत्वों की निश्चय श्रद्धा नहीं करता, इसलिए वह व्यवहाराभासी है। देखो एक तो बात है, उसने देव को भी नहीं समझा है, शास्त्र को भी नहीं समझा है और गुरु को भी नहीं समझा है। क्यों, गुरु तो तब वे हुए हैं कि जब उन्होंने अपने स्वरूप का अनुभव किया है ख्याल में, और वही आगे जाके देव बनने वाले हैं, यानी ये जो गुरु से लेके देव बनने की जो कोई प्रक्रिया है उसके पूर्व में उसके आत्मानुभूति सम्यक दर्शन होना चाहिए, ये उसे पता नहीं है, इसलिए केवल जाके उनकी भक्ति करें पूजा करें तो उसका कोई अर्थ नहीं, अर्थ नहीं इन द सेंस उसको सच्चे धर्म की मालूमत नहीं है और वे बाकी सारी क्रियाएं करता है, इसलिए उसको व्यवहारवासी कहा, उसे क्रिया जड़ भी कहते हैं। और जो यह मानता है कि शारीरिक क्रिया से धर्म होता है वह व्यवहाराभास से भी अति दूर है, ઘને દૂર છે. इसमें क्या है गड़बड़ है? शारीरिक क्रिया यानी क्या है? शरीर की क्रिया मैं कर सकता हूं और शरीर की क्रिया करने से धर्म होगा. ये डबल मिस्टेक है उसकी. क्यों? पहले में पहले तो अजीव तत्व को स्वतत्व माना और अजीव तत्व से आश्रव तत्व को धर्म माना. संवर तत्व को भी बोला तत्व की अपेक्षा से अगर हम सोचते हैं तो वैसे तो सभी तत्वों के देखो, देव को नहीं माना तो गुरु को भी नहीं समझा और इसी तरह तत्वों में तो सातों ही तत्वों को नहीं माना. लेकिन यहां उसकी मूल भूल क्या हो रही है? अजीव तत्व को स्वयं रूप माना या स्वयं को अजीव तत्व माना और फिर कह रहे हैं कि आश्रव कर रहा है और उससे धर्म माना. और देखो ये तत्व अलग अलग है तो ना जीव आश्रव का करता है ना पुद्गल आश्रव का करता है. यानी आश्रव यानी पुद्गल का जो पुण्यमन हो रहा है ना तो उसको तो और आगे खींचेंगे तो पर्याय का करता पर्याय ही है अन्य नहीं ऐसा लेना पड़ेगा. अब आगे नय के दो प्रकार. नय दो प्रकार के हैं राग सहित और राग रहित. आगम का प्रथम अभ्यास करने पर नयों का जो ज्ञान होता है वह राग सहित नय है. ये हम अभी आगम का जो अभ्यास कर रहे हैं वो क्या है? जो ज्ञान चल रहा है ना वह राग सहित है और उसको राग सहित नय कहा. वहां यदि जीव यह माने कि उस राग के होने पर भी राग से धर्म नहीं होता तो यह नय का ज्ञान सच्चा है. किंतु यदि यह माने कि राग से धर्म होता है तो वह ज्ञान नया बस है. दोनों नयों का यथार्थ ज्ञान करने के बाद अपनी पर्याय पर का लक्ष्य छोड़कर अपनी पर्याय अच्छा अपनी पर्याय पर का लक्ष्य छोड़ पर्याय ऊपर का लक्ष्य छोड़कर ऐसा कहना चाहिए. पर्याय पर का मैंने पर्याय पर का लक्ष्य छोड़कर ऐसा पढ़ा क्योंकि इन्होंने इसमें गैप रखा है ना.
यहाँ पर्याय ऊपर में लक्ष्य लिखा है.
आपके हिंदी में कैसा लिखा है?
गुजरात में पर्याय
यानी पर्याय और पर में गैप रखा है ना तो उसमें जरा मीनिंग गलत होता है. चलो ठीक है इसलिए पर्याय पर का ऐसा एकत्रित किया मैंने. अपनी पर्याय पर का लक्ष्य छोड़कर यानी अपने पर्याय नु लक्ष्य छोड़ी ने अपने त्रैकालिक शुद्ध चैतन्य स्वभाव की ओर लक्ष्य करे स्व सन्मुख हो तब सम्यक दर्शन आदि शुभ भाव प्रकट होते हैं. सम्यक दर्शन आदि शुद्ध भाव प्रकट होते हैं इसलिए वह नए राग रहित नय है. उसे शुद्ध नय का आश्रय अथवा शुद्ध नय का अवलंबन भी कहा जाता है. उस दशा को नयातिक्रांत भी कहते हैं. उसी को सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कहा जाता है और उसी को आत्मानुभव भी कहते हैं. अब यह क्या बताना चाहते हैं अपनी भाषा में समझना है. जब यह जीव अपने स्वरूप का अनुभव करता है उस समय कोई नये से वो अपने को नहीं जानता.
विकल्प नहीं है. राग सहित नहीं करते क्या है? पहले राग वाले नए थे ने? नयों को विकल्पात्मक नए थे ऐसा वैसे ऐसे उसमें शास्त्र से जाने थे. अब डायरेक्ट आत्मा को जान रहा है उसके शुद्ध स्वभाव को ज्ञान मिल गया तो वो आत्मा को जान रहा है. वहां तो शुद्ध नय का अवलंबन हो गया क्योंकि शुद्ध नय ने जिस विषय को बताया था उसको जान रहा है. विकल्पात्मक नहीं अभी उसी को उसने मुख्य करके उसको जान रहा है. उसकी बात
देखो मैं यहाँ नयातिक्रांत का अर्थ समझा हूँ. देखो हम कहते हैं ना ये 14 जनवरी को क्या होता है मालूम है आपको? बाल दिन. और 14 नवंबर को संक्रांत, हाँ संक्रांत यानी क्या होता है कि कुछ नई मतलब बदल होता है छोटू से। तो यहाँ क्या कह रहे हैं वो क्रांत करना यानी उसको उल्लंघन करना, तो नए जो है वो नयों से भी पार हो जाना यानी क्या नयातीत हो जाना, उसको नयातिक्रांत कहा। पहले तो नए से जान रहा था, अब नए भी नहीं रहे और अपने स्वरूप को नयों का ध्यान छोड़कर अपने स्वरूप का लक्ष्य किया और उसका अनुभव किया तो ये नयातिक्रांत हुआ। ये समय सार का शब्द है
एक ही
इसमें
से लिया है
कौन सा
ये जो 19 नंबर का
लिखा नहीं इसमें। अब आगे बढ़ते हैं 20 नंबर का पद
कह रहे
हैं
नया विक्रांत को या पक्षांतिक्रांत को वो विकल्पात्मक निर्दशा नहीं रही है।
प्रमाण सप्तभंगी और नए सप्तभंगी, ये सप्तभंग क्या होते हैं मिले भाई जानते हैं? हाँ बोलो बोलो बोलो। ये सात भेद होते हैं, पदार्थ को समझने के लिए सात प्रकार से जाना जाता है। तो इसमें तीन बातें होती है अस्ति नास्ति और अवक्तव्य, ख्याल में? तो अस्ति नास्ति और अवक्तव्य अभी इनके हम कॉम्बिनेशन देखेंगे तो क्या होगा कि इनके सात ही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। यानी स्यात यानी कथनचित, कथनचित यानी किसी अपेक्षा से, यानी किसी अपेक्षा से मैं हूं तो ये स्यात अस्ति कहेंगे, किसी अपेक्षा से मैं नहीं हूं वो हो गया स्यात नास्ति। तीसरा है किसी अपेक्षा से मैं मेरे बारे में कुछ नहीं बता सकता स्यात अवक्तव्य। ये तीन पॉइंट है, इनके हम एक 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 अलग अलग लेंगे तो तीन मूल उनके ये होते भेद, फिर दो दो मिलके करेंगे तो वो भी तीन होते स्यात अस्ति स्यात नास्ति और स्यात अवक्तव्य। अब ये तीन हो गए तो फिर तीन और तीन छह और तीसरा तीनों का मिलकर स्यात अस्ति नास्ति अवक्तव्य। अभी ये जो ये प्रमाण सप्तभंगी है और नए सप्तभंगी है यानी पर्याय की अपेक्षा से भी लगेंगे और द्रव्य की अपेक्षा से भी लगेंगे। सप्तभंगी के दो प्रकार है, सप्तभंग का स्वरूप चौथे अध्याय के उपसंहार में दिया गया है वहां से समझ लेना चाहिए। दो प्रकार की सप्तभंगी में से जिस सप्तभंगी से एक गुण या पर्याय के द्वारा संपूर्ण द्रव्य जाना जाए वह प्रमाण सप्तभंगी है और जिस सप्तभंगी से कथित गुण अथवा पर्याय के द्वारा उस गुण अथवा पर्याय का ज्ञान हो वह नए सप्तभंगी है। यानी उन्होंने एक ही पर्याय को या एक ही गुण को एक प्रमाण का विषय बताया और एक नए का विषय बताया। इस सप्तभंगी का ज्ञान होने पर प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता ऐसा निश्चय होने से अनादिकालीन विपरीत मान्यता टल जाती है। क्या कहना चाहते हैं? ये सप्तभंगी जानने से हमारा मिथ्यात्व कैसा नष्ट होगा? तो हम थोड़ा सा देख के आगे बढ़ेंगे कि जैसे हमने कहा कि स्यात अस्ति, ये मैंने परसों आपको बताया था, तो किसी अपेक्षा से आप हो भी और नहीं भी तो किसी अपेक्षा से आप हो, जब ऐसा कहेंगे तो आप अपने पे लगाएंगे, किसी अपेक्षा से मैं हूं यानी मैं जीव द्रव्य हूं तो मैं हूं अभी, लेकिन मैं इसी समय नहीं हूं तो कैसे? पर की अपेक्षा से मैं ही नहीं हूं। तो आज तक हमने ये कहां माना है कि मैं मुझे ये टेबल को मैं उठा सकता हूं, ये क्लिप को मैं पकड़ सकता हूँ, तो कहते तेरी अस्थि तेरे में है, पर में तेरी नास्ती है, तो तू परद्रव्य का कार्य करे, ये बात कहाँ से आई? तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, ये बात इससे सिद्ध होती है कि कहेंगे कि भाई तेरा अस्तित्व तेरे में है, शरीर में नहीं है, तो शरीर को तू क्या बोलते हैं, दुबला बनाए, पतला बनाए या मोटा बनाए, ये बात आएगी कैसे? जहां तेरा अस्तित्व ही नहीं है, जहां तेरी सत्ता ही नहीं है, तो तू पर का कुछ कार्य करे, ये बात कैसी नक्की हो सकती है? इसलिए क्या कहा, देखो इस सप्तभंगी का ज्ञान होने पर प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, यानी प्रत्येक द्रव्य का परिणमन तो होता है और परिणमन करने के लिए उसको पर की कोई भी अपेक्षा नहीं है, इसलिए वो स्वतंत्र है अपना अपना परिणमन करने के लिए, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, ऐसा निश्चय होता है, और अनादिकाल की जो अपनी खोटी विपरीत मान्यता है वह बदल जाती है, टल जाती है, ऐसी बात बता रहे। वीतरागी विज्ञान का निरूपण, जैन शास्त्रों में अनेकांत रूप यथार्थ जीवादि तत्वों का निरूपण है तथा सच्चा निश्चय रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग बताया है।
21वां
हाँ 21 का ही पढ़ रहा हूँ। देखो मैं पढ़ रहा हूँ वीतरागी विज्ञान का निरूपण,
हमारे गुजरात में 22 का है। अच्छा, इसमें बीच में 10 लाइन है।
अच्छा
हाँ ये मैं पढ़ती हूँ।
हाँ बोलो।
आ शास्त्र में मुख्यपणे व्यवहार नहीं कथन है, इस शास्त्र की बात है। मोक्ष मार्ग निश्चय रूप और व्यवहार रूप एम बे प्रकार नहीं, छता बे प्रकार मानवों के भूत है। मोक्ष मार्ग तो मोक्ष मार्ग है, किसी को व्यवहार से कुछ अलग प्राप्त होगा, निश्चय कुछ अलग होता, ऐसा तो नहीं है। मोक्ष मार्ग बे नहीं, परंतु मोक्ष मार्ग निरूपण बे प्रकार के, हमेशा जो निश्चय और व्यवहार लगता है वो कथन में लगता है, ज्ञान में तो लगता है, कथन में हम देख रहे हैं वस्तु में नहीं। ये है वस्तु प्रिंसिपल निश्चय के व्यवहार। ये पेंसिल निश्चय के व्यवहार
निश्चय कहा
कैसा पता वस्तु वस्तु। अब मैं कहूँ ये लकड़ी की है, अब ये लकड़ी है ना बाहर वस्तु की नहीं, लकड़ी की वो निश्चय, हमने कहा ये मेरी है, ये व्यवहार है। पेंसिल ना निश्चय ना व्यवहार है,
वस्तु ना निश्चय से होती
है। उसका कथन किस पद्धति से है? वो अभी चांदी के थाली में जमाया था ना, चांदी की थाली चांदी की कहना वो निश्चय, और उसी को हम कहेंगे अश्विन भाई की है, क्या बोलती है तो क्या हुआ, वो कथन हुआ। उस वस्तु के बारे में जो कथन है वो दो प्रकार के। अब मोक्ष मार्ग तो मोक्ष मार्ग ही है, अब मोक्ष मार्ग का कथन हम कैसे कर रहे हैं, तो कथन में निश्चय व्यवहार है, मोक्ष मार्ग तो जो है वही है, यही बात यहाँ बता रहे हैं कि जी जो सच में मोक्ष मार्ग है उसी को मोक्ष मार्ग कहना ये निश्चय कथन है, और वो है नहीं परंतु उपचार से जो साथ में जो राग भाव है ना, कौन से शुभ राग है, मुनि की अपेक्षा कहेंगे तो 28 मूल रूप पालन करने का शुभ भाव है, उसको कह देना कहना कोई बात नहीं है, परंतु वो कैसा का उपचार से का व्यवहार से का, वो मूल मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग तो एक ही है। तो ये आगे बात बताइए, आप पढ़ेंगे इसको? नहीं आपके मैं नहीं पढ़ूंगी। जहाँ साचा मोक्ष मार्ग नु निरूपण करू छे ते निश्चय मोक्ष मार्ग छे, ये कथन की बात, तथा जे मोक्ष मार्ग तो नहीं परंतु मोक्ष मार्ग निमित्त छे, कौन सा निमित्त है, अभी सच्चेदेव गुरु शास्त्र की भक्ति के साथ दुर्गम की प्रति की वो जो कुछ है वो सहचर है, निमित्त है, तेने उपचार थी मोक्ष मार्ग कहवा आवे छे, जिसे समय दर्शन में भी लगाया था ना, निश्चय समय दर्शन और व्यवहार समय दर्शन। व्यवहार समय दर्शन क्या होता है? तो पहले व्यवहार समय दर्शन करना कि निश्चय करना? तो समय दर्शन तो समय दर्शन है, उसका कथन जो सच में सम्यक दर्शन है उसको कहना वो निश्चय है, और उसके साथ वाला जो है उसको व्यवहार सह कहते हैं। परंतु निश्चय जहाँ नहीं है वहाँ व्यवहार होता ही है। यहाँ पेंसिल ही नहीं है और मेरी पेंसिल कह दी।
देखो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जहाँ साचा मोक्ष मार्ग नो निरूपण कईरू छे ते निश्चय मोक्ष मार्ग छे, तथा जे मोक्ष मार्ग तो नथी परंतु मोक्ष मार्ग नो निमित्त छे तेने उपचार थी मोक्ष मार्ग कहेवामां आवे छे। यानी जो हम शुद्धोपयोग से अपने स्वरूप में एकाग्रता करके संवर निर्जरा कर रहे हैं उसको निश्चय मोक्ष मार्ग कहेंगे, लेकिन उसके साथ रहने वाला जो राग है और राग के कारण से जो 28 मूल गुण आदि पालन का जो कुछ कार्य हो रहा है उसको भी मोक्ष मार्ग कहना, यानी शुभ परिणामों को भी मोक्ष मार्ग कहना, यह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। वो तो है नहीं फिर भी उसे साथ में है, इसलिए निमित्त रूप से है, इसलिए उसको भी उपचार से मोक्ष मार्ग कहते हैं। आ शास्त्र मुख्यपने व्यवहार नहीं थी कथन छे, ये आ शास्त्र में जो बात करी छे ने ये तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक की बात है। ये केम के ये बिल्कुल वर्ड टू वर्ड मोक्ष मार्ग प्रकाशक में है। क्या कह रहे हैं? आ शास्त्र में मुख्यपने व्यवहार नहीं थी कथन छे, केम के तेमा जिज्ञासुओं ने समझावा माटे भेदो अने निमित्तों ना वर्णन द्वारा कथन करवामा आव्यु छे। ए लक्ष्मा राखो के व्यवहार नहीं ना शास्त्रों भेद मा रोकवा माटे नथी। यार वो भेद करके कथन कर रहे हैं तो उसमें हम अटक जाए तो हम फंसेंगे, ऐसा कह रहे। तो कह रहे व्यवहार नहीं ना शास्त्रों भेद मा रोकवा माटे नथी, पण भेद द्वारा अभेद आत्मा ने समझावे छे। ये भेद करके कथन करना इसको भी व्यवहार कहा ना, तेथी तेने व्यवहार शास्त्रों केवामा आवे छे। जो आत्मा नु अभेदपनु जीव न समझे अने मात्र भेद ने ज जाने तो तेने राग टळे नहीं अने धर्म थाय नहीं। क्योंकि जब जब भेद किए जाते हैं तो वो विकल्पात्मक है, तो उस समय जीव को निश्चित रूप से राग होता है। तो कहते हैं कि वो शुद्ध परिणाम रूप नहीं परिणमेगा, माटे आत्मानु अभेदपनु समझवानी जरूर छे। जो भेद पाड़ी ने कहेवामां न आवे तो जीवो वस्तु स्वरूप समझे शके नहीं। ये बात हमने कल या परसों देखी थी कि आत्मा का अनुभव करो, तो आत्मा का अनुभव करो यानी क्या करो? आत्मा का अनुभव करो, पर आत्मा क्या है? ऐसा जो हमने देखा तो वही कह रहे हैं कि जो भेद पाड़ी ने कहेवामां न आवे तो जीवो वस्तु स्वरूप समझी शके नहीं, माटे भेदो द्वारा वस्तु स्वरूप समझावामां आवे छे। बराबर आपका जो गुजराती में पढ़ लिया अभी हिंदी पढ़ेंगे।
यहाँ जो आ शास्त्र मुख्यपणे व्यवहार कहेवामां आवे छे उनके शास्त्र की बात करें, यही शास्त्र की बात करें।
बात ऐसी है, कोटेशन तो वहां का लिया वर्ड टू वर्ड कल मैंने अभी यहाँ जो अनेक बातें बताई है वो कहीं ना कहीं से कोटेशन से ली है। देखो मेरे पास आपको बताऊं मैं, सुनो तुम, आपका कहना है कि ये ओनली मोक्ष शास्त्र के लिए है, ऐसा आपका मानना है, लेकिन मैं कहूंगा कि तत्वार सूत्र की भी यहां उन्होंने पहले इसमें इंग्लिश तत्वार सूत्र का दृष्टांत दिया है, फिर उसके बाद ये देखो चौदवा नंबर का जो पॉइंट है, चौदवा नंबर का पॉइंट, उसमें उन्होंने यहां लिखा है आधुनिक हिंदी मोक्ष मार्ग का प्रकाशन पृष्ठ 351। आपके हिंदी में है क्या ये लिखा हुआ? अब आगे ये जो ये जैन छात्रों की पद्धति वगैरह ये सारी जो बातें हैं वो बिल्कुल मोक्ष मार्ग प्रकाशित में से उन्होंने उत्कृत किए। या अभी वितरागी विज्ञान का निरूपण जो लिखा है 21 नंबर, वह भी आधुनिक हिंदी मोक्ष मार्ग
वो ठीक है, परंतु ये जो हेडिंग दिए है एक एक पॉइंट को, ये इस शास्त्र के लिए ये बात
नहीं, आप यहाँ ऐसी बात निकली है उसमें देखो, अभी इसमें ऐसा लिखा है कि क्या वो पढ़ो आपका जो कोई
शास्त्र में मुख्यपणे व्यवहार नहीं हो कथन छे, ये तो हेडिंग है।
एक मिनट कहाँ लिखा
है? 21 नंबर पॉइंट।
अच्छा अच्छा,
आप में है ही नहीं है,
मेरे में तो
है। हेडिंग दिए है वो राम जी बड़ी ने दिए।
अच्छा, अभी ये प्रश्न ये है
सूत्र के बारे में,
वही उनको पूछना है।
वो तो आशासन में मुख्यपणे व्यवहार नहीं हो कथन थे, ऐसा तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में नहीं लिखा।
पैराग्राफ के अंदर है,
उसमें ये लिखा है ये लक्ष्मण राखू के व्यवहार नहीं ना शास्त्रों का भेद, हाँ अंदर भी लिखा है कि वो उच्चार्थी मुक्षमा के जहाँ शास्त्रों में छोटी था और सेकंड थर्ड फोर्थ आशास्त्र।
आ शास्त्र में मुख्यपणे व्यवहार नहीं थी कथन छे, इस पर मैंने ऐसा बताया कि ये वर्ड टू वर्ड मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से लिया हुआ है, तो आपका ये पूछना है कि ये
केवल पहले दो तीन वाक्य उसमें से लिए हैं, उपचार के मोक्ष मार्ग केवल आवे छे यहाँ तक मोक्ष मार्ग के कथन है, और आगे जो लिखा है आ शास्त्र में मुख्यपणे व्यवहार नहीं थी कथन थे क्योंकि भेदो निमित्तों का वर्णन द्वारा कथन करना ये तो मोक्ष मार्ग में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ये इसकी बात है।
तो आपका यही पूछना है, यानी अरविंद भाई ये पूछ रहे हैं कि क्या ये बात वो तत्वार सूत्र के लिए लिखी है,
तत्वार सूत्र के लिए,
क्या अन्य कोई शास्त्र के लिए या दोनों शास्त्र के लिए?
ऐसा तो सब जगह लागू होगी, परंतु यहाँ तत्वार सूत्र की अपेक्षा से ये हेडिंग्स डाले हैं और ये बीच में भी एक कथन आया है,
तो फिर हर जगह पर ये ब्रैकेट में क्यों लिखा है? प्रयोजन सार गाथा 94 टीका आधुनिक हिंदी मोक्ष मार्ग प्रकाशक 24 ये जो लिखे हैं वो किस कारण लिखे हैं?
और उसमें हेडिंग इन्होंने दिए जो इस शास्त्र में भी ये कथन लागू होता है, इसलिए
लागू होता है वो बात नहीं है, ये प्रश्न ये है कि वो किस कारण लिखा गया है, मतलब इस शास्त्र के लिए लिखा है या ओरिजिनल शास्त्र का वो उद्गृत है, ये प्रश्न है, ख्याल में है ना? उनका ऐसा पूछना था, मैंने ये बताया था कि ये बात मोक्ष मार्ग प्रकाशक की, आपका मानना है ये तत्वार सूत्र की है, इससे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो आपको जज बनाया है, जो सत्य बात है वो बोलना। अच्छा, अभी हमारे यहाँ 21 पॉइंट है, उसको हम पढ़ते हैं। वितरा टाइम हो गया, चलो कल तक बता देना क्या फर्क पड़ता है,
कुछ बताने का जरूरत
क्यों? जो सत्य है वो स्वीकार करना ही चाहिए, क्योंकि मैं तो बिल्कुल कहता हूँ मैं तो कोई सर्वज्ञ नहीं हूँ, हो सकता है मेरी भी गलती हो, लेकिन मैं भी सुधरना चाहता हूँ ना, हट तो नहीं करना चाहता हूँ, और मेरी बात सही है तो आपको भी मानना पड़ेगा, क्योंकि हम हर जगह कोटेशन दिए, हर जगह कोटेशन दिए, ये देखो जो पेज निकाल के देखो। हाँ, तो अगर इस शास्त्र की बात बतानी थी तो कोटेशन देने की आवश्यकता क्या है, ये मेरा प्रश्न, ऐसा मुझे लगा इसलिए मैंने वो प्रतिपादित किया है। चावणी के ज्ञान